सुबह का वक्त था। हवेली का बड़ा सा डाइनिंग हॉल धूप से भरा हुआ था। खिड़कियों से आती सुनहरी रोशनी जमीन पर फैल रही थी, जैसे हर कोना किसी अनकहे सुकून से भर गया हो। लंबी मेज पर नाश्ते की खुशबू तैर रही थी, गरम-गरम पराठे, सब्जी, दही और चाय की भाप। आज माहौल कुछ अलग था। श्यामली और अदिति दोनों साथ मिलकर नाश्ता परोस रही थीं। श्यामली की चाल में आज हल्की सी झिझक थी। हाथों में प्लेट थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार बिना चाहे ही विश्वनाथ की तरफ चली जाती। वो अपनी जगह पर शांति से बैठा था, अखबार एक तरफ रखा हुआ, चाय का कप हाथ में। चेहरे पर वही ठहराव, वही सहज मुस्कान, पर श्यामली के लिए वो ठहराव आज कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। अदिति ये सब देख रही थी, बहुत ध्यान से। मेज पर रत्ना देवी बैठी थी, सीधी, संतुष्ट सी। उनके बगल में सुषमा देवी, हमेशा की तरह गंभीर और नाप तौल वाली नज़रों के साथ। शकुंतला, रम्या, विशाल और आर्यन भी अपनी अपनी जगह पर थे। अदिति, जरा वो चटनी इधर देना, शकुंतला ने कहा। जी बुआ, अदिति ने मुस्कुराते हुए चटनी बढ़ाई और उसी मुस्कान में शरारत भी घुली हुई थी। उसने प्लेट रखते रखते अचानक आवाज ऊंची कर दी, वैसे श्यामली? श्यामली का हाथ जरा सा कांप गया। हाँ, उसने संभल कर कहा। अदिति ने मासूमियत तोड़ते हुए कहा, कुछ देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। मेज पर हल्की सी खामोशी छा गई। श्यामली ने अदिति की तरफ देखा, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। तुम वहां नहीं थी, अदिति आगे बोली, लेकिन मैंने तुम्हें कमरे की तरफ जाते देखा था। उसकी आवाज में सवाल कम, खेल ज्यादा था। तो मैं सोच रही थी, वो जानबूझकर रुकी। तुम कहाँ थी? श्यामली के गालों में हल्की सी लाली उतर आई। उसकी नज़र अनायास ही विश्वनाथ पर चली गई। वो शांत बैठा था, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे सब समझ रहे हों। अदिति ने बात को और गोलमोल किया, मतलब कमरे में शावर की आवाज़ आ रही थी। अब सबकी नज़रें उठ चुकी थीं। रम्या ने हल्का सा खांसा, विशाल ने नज़रें प्लेट में गड़ा लीं, शकुंतला ने भौहें चढ़ाईं, श्यामली ने होंठ भींच लिए। अदिति, उसने धीमे से कहा। लेकिन अदिति कहाँ रुकने वाली थी। ओह, उसने अचानक ऐसे जताया जैसे अभी समझ आई हो। अच्छा, तुम पापा के साथ अंदर थीं। एक पल के लिए पूरे कमरे में अजीब सी झिझक फैल गई। रत्ना देवी ने हल्का सा चौंक कर सुषमा देवी की तरफ देखा। रम्या की आंखों में असहज मुस्कान आ गई। विशाल ने कुर्सी पर पहलू बदला, और आर्यन, उसका चेहरा सख्त हो गया। अदिति, उसने अचानक सख्त आवाज में कहा, ये वक्त नहीं है। अदिति ने उसे देखा। किस बात का वक्त नहीं है? यहाँ सब बड़े बैठे हैं, आर्यन ने गुस्सा दबाते हुए कहा। ऐसी बातें मत करो, अदिति ने कंधे उचका दिए। तो क्या हुआ? उसने बेपरवाही से कहा। पापा और श्यामली पति पत्नी हैं, ये सब तो चलता रहता है। श्यामली की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे पूरी मेज की गर्मी उसके चेहरे पर आ गई हो। विश्वनाथ ने चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक साफ सीमा थी। अदिति, बस इतना ही, अदिति समझ गई। उसने जीभ हल्की सी बाहर निकालकर कहा, ओके ओके, सॉरी। आर्यन ने गहरी सांस ली। मेज पर फिर से हल्की सी बातचीत शुरू हुई, लेकिन वो सहजता कुछ देर तक वापस नहीं आई। नाश्ता खत्म हुआ, सब धीरे धीरे उठने लगे। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल के एक कोने में सुषमा देवी और रत्ना देवी बैठी थी। श्यामली अंदर रसोई में चली गई थी, विश्वनाथ कमरे में निकल चुका था। रत्ना देवी के चेहरे पर आज अलग सी चमक थी। दीदी, उन्होंने धीरे से कहा, आज दिल बहुत खुश है। सुषमा देवी ने उन्हें देखा, किस बात की इतनी खुशी? विश्वनाथ और बहू, रत्ना देवी ने मुस्कुराकर कहा, एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, भले ही साल भर बाद। उन्होंने आंखें मूंद ली, विश्वनाथ को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर धीमे से जोड़ा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसी बातें मत किया करो, सुषमा देवी ने तुरंत कहा, और ज्यादा खुश भी मत हो। रत्ना देवी ने उनकी तरफ देखा। क्यों? सुषमा देवी की आंखों में कठोरता झलक आई। ये लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही चालाक लगती है, श्यामली चौंकी। हाँ, सुषमा देवी ने बिना झिझक कहा, इसे ज्यादा उड़ने मत देना, बहू है तो बहू जैसे ही रखो। उनकी आवाज में सिखाने वाला लहजा था। मैंने अपने बेटे बहुओं को भी इसी तरह संभाला है, वो आगे बोली, कब कहाँ कितना बोलना है, कब कहाँ रुकना है, सब सिखाया है। रत्ना देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दीदी, ये घर अब वैसा नहीं रहा। सुषमा देवी ने तीखी नजर डाली। मतलब? रत्ना देवी ने शांति से कहा, अब बहुओं को सिर्फ काबू में रखने से घर नहीं चलता, उन्हें अपनाने से चलता है। सुषमा देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। उसी वक्त रसोई के बाहर खड़ी श्यामली ने ये आखिरी बातें सुन ली थी। उसने चुपचाप प्लेट काउंटर पर रखी। दिल में एक हल्का सा डर और उससे बड़ा भरोसा। उसे पता था रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आज नाश्ते की मेज पर उसने ये भी महसूस किया था कि वो इस घर में अब सिर्फ बहू नहीं है, वो किसी की पसंद है, किसी का सुकून है, और यही एहसास उसे आगे खड़े हर तूफान से लड़ने की ताकत दे रहा था। कमरे में हल्की सी चहल पहल थी। विश्वनाथ तैयार हो चुका था, साफ सुथरी शर्ट, घड़ी कलाई पर, फाइल हाथ में। बस निकलने ही वाला था कि उसकी नजर श्यामली पर ठहर गई। श्यामली खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर धूप फैल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सुबह की सारी उलझने तैर रही थी। विश्वनाथ ने बिना कुछ कहे फाइल मेज पर रखी और उसकी तरफ बढ़ा। श्यामली, आवाज में वही ठहराओ। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही विश्वनाथ ने उसे हल्के से बाहों में ले लिया। कोई कसाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक सुरक्षित घेरा। श्यामली का सिर अपने आप उसकी छाती से टिक गया। आज सब ठीक था, उसने धीमे से पूछा। श्यामली ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा अजीब था। अतिथि की बातों से, उसने तुरंत समझ लिया। श्यामली ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी शर्ट को उंगलियों में हल्का सा भींच लिया। विश्वनाथ ने उसके माथे पर बहुत हल्का सा चुंबन रखा। घर में बातें होती रहेंगी, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें हर बात अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। श्यामली ने आंखें उठाई। अगर किसी को बुरा लगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है, विश्वनाथ ने साफ कहा। तुम बस ये याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। श्यामली की सांस थोड़ी हल्की हुई। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, उसने मुस्कुराकर कहा। जरूरी नहीं, श्यामली ने धीरे से जवाब दिया। आप बस ऐसे ही रहें। विश्वनाथ मुस्कुराए। ऐसे ही तो रहूंगा, उसने उसे आखिरी बार बाहों में भरा, फिर धीरे से अलग हुए। दरवाजे तक जाते हुए बोले, और हाँ, आज मुस्कुराती रहना। दरवाजा बंद हुआ, श्यामली वहीं खड़ी रह गई, दिल में वही सुकून जो सुबह से उसके साथ था।